ओम शांति। आज हम सब प्यारे बाबा के महावाक्य मुरली क्लास में सुन रहे थे। बाबा ने हम बच्चों को कितनी धारणाओं पर समझाया, साथ साथ बाबा ने वरदान में बताया कि अलंकारी जो हैं वो देह अभिमानी नहीं हो सकते। अब जब बाबा कहते हैं कि तुम अलंकारी हो, तो अलंकारी भी कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? कितने प्रकार के अलंकारी होते हैं, हैं? अलंकार का समझते हैं, जिनको हर अस्त्र शस्त्र डले हुए हों। तो अलंकारी दो प्रकार के हैं। एक है जिसको हम कहते हैं योद्धा। जब योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है तो पूरे अपने अस्त्र शस्त्रों से सजा हुआ जाता है। उसकी अगर एक भी शस्त्र की कमी होगी तो उसको बहुत कमी महसूस होती है। जाने से पहले जो उनका हेड होता है सबके शस्त्र चेक करते हैं कि इन्होंने सारे शस्त्र लिए हैं या नहीं लिए हैं, इनको पूरी ट्रेनिंग है या नहीं है, उसकी ट्रेनिंग का भी पूरा पूरा वो ध्यान रखते हैं। और योद्धा का काम क्या होता है, जब वो युद्ध के मैदान में होता है तो कैसे रहता है? बहुत एक्टिव और अलर्ट रहता है। योद्धा कभी ये नहीं कहेगा मैं क्या करूं, मैं तो सामने देख रहा था दुश्मन पीछे से आया, मैं इधर देख रहा था दुश्मन कॉर्नर से आया, मैं नीचे देखा दुश्मन ने ऊपर से अटैक कर लिया, ऐसे तो वो कभी नहीं कहेगा। योद्धा मीन्स कैसा होता है, खड़ा एक स्थान पर है, उसकी आंखें जो है वो चारों ही तरफ घूमती हैं। जैसे आप देखते ना कभी कभी कोई विशेष प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई वाइस प्रेसिडेंट आता है, उसका जो बॉडी गार्ड होता है वो पीछे खड़ा होता है, ऐसे खड़ा होता है जैसे कोई स्टैचू खड़ा है। लेकिन स्टैचू खड़े हुए भी उसकी आंखें कैसे हैं, उसको ये भी पता है पीछे कौन आया, आगे कौन आया, साइड में कौन आया है, इस तरफ कौन गया और किस तरह से गया है। तो इसलिए बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे तुम अभी हो युद्ध के मैदान में। तो युद्ध के मैदान में माया क्या करती है, बहुत धीरे से चुपके से आकर के ऐसा प्यार भरी लोरी देती है, इतनी प्यार भरी लोरी देती है, उस लोरी के अंदर माया धीरे से धीरे अपने आलस्य की नींद में सुला देती है। या फिर माया कभी कभी परचिंतन की ओर ले जाती है, माया कभी कभी व्यर्थ बातों की ओर ले जाती है। जो हमारा लक्ष्य है तो उस लक्ष्य से हमको दूर लेकर के जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस संगम युग के अंदर बाबा ने हमको क्या कहा है। कल भी बाबा मुरली के अंदर बता रहे थे तुम युद्ध के मैदान में हो। बैठे कहाँ हो, पट के ऊपर बैठे हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है, केवल कभी मुरली है कभी नहीं है, कभी नोटबुक है कभी नहीं है, कभी कुछ है, लेकिन बैठे कहाँ हैं, युद्ध के मैदान में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो जब संगम युग के अंदर हम योद्धा हैं, तो योद्धा का पहला कदम क्या है, उसका लक्ष्य मजबूत होना चाहिए। लक्ष्य कौन सा है उसका, कि हमको विजयी रतन बनना, हमको बाबा के दिल तख्त नशीन पर बैठना है। उसके लिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को इस संगम युग के अंदर तीन सर्टिफिकेट लेने हैं। पहला सर्टिफिकेट कौन सा है, कि अपने पुरुषार्थ से हम कितने संतुष्ट हैं। दूसरा सर्टिफिकेट है कि हमारे पुरुषार्थ से, हमारी धारणा से, हमारे व्यवहार से ब्राह्मण परिवार, या जिसको कहें हमारे निमित्त जो टीचर बहने हैं या निमित्त हमारे जो हैं, वो हमारे चार्ट से कितना सेटिस्फाई है। और तीसरा सर्टिफिकेट बाबा कहते हैं, बाबा तब देते हैं जब ये दो सर्टिफिकेट से पास होते हैं, तब जाकर के तीसरा सर्टिफिकेट मिलता है। तो ब्राह्मणों को इस संगम युग के अंदर अपने लक्ष्य को सामने रखना है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाबा कहते बार बार क्या करो। कभी कभी बाबा मुरली के अंदर कहते हैं ना कि देखो मैं जब नारायण के चित्र को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। साकार में बाबा का पाठ तो फिक्स ही है कि ये जाकर के श्री कृष्ण अथवा नारायण बनेगा। तो साकार में बाबा कहते थे कि जब मैं बैठता हूँ तो मैं चित्र को देखता हूँ, मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ कि ऐसा मुझे बनना है तो मेरे अंदर ये सारे गुण है या नहीं। तो बाबा उसको चेक करके कंपेयर करके बाबा उसको क्या करते थे, अपने अंदर धारणा में लाते थे। बाबा उन बातों का ध्यान रखते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी योद्धा हो तो अपनी चेकिंग करनी है। तो अपनी चेकिंग के लिए क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? बाबा तो नारायण के चित्र के सामने जाकर के देखते थे, तो तुम बच्चे क्या करेंगे अपनी चेकिंग के लिए? हैं? फॉलो फादर हैं, फॉलो फादर, ठीक बोला। वो तो बाबा ने कहा फॉलो फादर मीन्स बाप समान बनना, कि जो बाबा की हमारे प्रति आशाएं हैं, बाबा जो हमसे चाहते हैं वैसा ही हम पूर्ण करें तो हम बाप समान बन सकते हैं। इसके लिए दूसरा तरीका है स्व चेकिंग के लिए अपने पास एक दर्पण रखना। दर्पण होता है ना शीशा, माताएं कहाँ रखती है शीशा? अपने पर्स के अंदर रखेंगे। जब कभी कुछ होगा कहीं भी जाएंगे तो पर्स खोला, उसमें से शीशा निकाला, अपने आप को चेक किया, अपने आप को सेट किया। और भाई कहाँ रखते हैं? वो अपने मोबाइल में चेक कर लेते हैं, या फिर स्कूटर चला रहे हैं स्कूटर के मिरर में चेक कर लेते हैं, या गाड़ी के मिरर में चेक कर लेते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हमको कौन सा दर्पण रखना है, अपनी स्व स्थिति का दर्पण, कि मेरी स्थिति कैसी है उस स्थिति का दर्पण रखना है। और दर्पण भी दो तीन प्रकार के होते हैं। एक है छोटा दर्पण जो पर्स में रहता है, और दूसरा कौन सा होता है जो घर में रहता है हाफ होता है, और तीसरा एक लंबा होता है, और चौथा दर्पण आजकल ऐसा है जो कार्टून टाइप होता है, किसमें मोटा दिखाई देता है किसमें पतला दिखाई देता है, पतला मोटा दिखाई देगा, अच्छा भला टेढ़ा दिखाएगा टेढ़ा सीधा दिखाई देगा। तो बाबा कहते ऐसा दर्पण नहीं रखना है कि जो अपने को देखने गए हैं अपनी चेकिंग करने गए हैं तो अपने अवगुणों से इतना आपको भरपूर कर दिया है, या अपनी महिमा करते जा रहे हैं जिसको बाबा कहते मियां मिट्ठू बनना है। मियाँ मिठू बन जाते ना, मैं सब कुछ करता हूँ, मेरा पुरुषार्थ सबसे अच्छा, मेरे जैसा पुरुषार्थ कोई नहीं करता। तो वो दर्पण ऐसा है जिसमें आपका रूप बहुत मोटा दिखाई देगा। फिर दूसरा दर्पण वो है जिसमें पतला पतला दिखाई देता है, वो है कि मैं क्या करूँ, मैं पुरुषार्थ तो कर ही नहीं सकता, मेरा शरीर कमजोर है, हमारे सामने इतने बंधन है, हमारे इतने समस्याएं हैं, हमारा परिवार ज्ञान में नहीं चलता, हमको कोई सहयोग नहीं देता, इनको टीचर भी सहयोग देती है परिवार भी सहयोग देता है। उसमें धीरे 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 अंदर की अवस्था कमजोर होती जाती है, जिसको डॉक्टर कहते हैं ना बहुत कमजोर हो गया है, कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर उसको हाई पावर के डोजेस देता है ताकि वो अपनी शक्ति को फिर से वैसे धारण कर सके। फिर तीसरा जो कार्टून दिखाते हैं ना, वो कार्टून कौन सा है, इधर देखा उधर देखा इस तरह से देखा, अपने को नहीं देखा दूसरे को देखा, तो उसको बाबा क्या कहते हैं, वो जैसे कि कार्टून बन जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसा हमें काम नहीं करना है, अपना लक्ष्य सामने रखना है, अपने आप को चेक करना है। और दूसरा मौका आप सबको यहाँ पर मधुबन के अंदर इतना सुंदर मौका मिला है तपस्या करने का, तपस्या के साथ साथ चारों धाम की यात्रा करने का। तो आज भी जैसे आप सबको बहुत अच्छा मौका दिया गया था कि कुछ भाई बहने शांति स्तंभ पर बैठ के योग करें, कुछ बाबा के कमरे में करेंगे, कुछ हिस्ट्री हॉल में करेंगे, कुछ बाबा की झोंपड़ी के पास जाएंगे, लेकिन आज हमने क्या किया मालूम है, क्या किया, अपने लक्ष्य को भूल गए। शांति स्तंभ के अंदर सबने अपने मोबाइल ऑन कर लिए और मोबाइल से देख रहे हैं, बातें कर रहे थे सुन भी नहीं रहे थे। फिर मैंने जब दूर से देखा तो मैं आकर के क्या किया, सब उठो यहाँ से, बोला था ना याद है, जो है शांति स्तंभ पर बैठे थे ना आज, जो छोटा सा ग्रुप था, लेकिन देखो ये स्थान वो स्थान है जहाँ बैठ करके अपने आप को चेक करना है। तो जब आप चारों धाम की यात्रा करते हैं उस समय अपना मोबाइल बंद कर लो, उस समय किसी से बात नहीं करो, उस समय आप बाबा के साथ का अनुभव करो, क्योंकि शांति स्तंभ जो है ये हमारा यादगार स्थान है, और ये ऐसा स्थान है यहाँ पर कोई जाता है उसको ऐसे गहरे अनुभव होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बार एक अज्ञानी व्यक्ति आया और शांति स्तंभ के पास गया, वहां जाके बैठ गया, बोला दो मिनट में जा चक्कर लगा, अरे आधा घंटा हो गया उठता ही नहीं है। मैंने उसको कहा कि भाई जी टाइम हो गया, कहता बहन जी क्या बताऊं, ऐसी शक्ति आ रही थी, ऐसी लाइट आ रही थी, ऐसा अनुभव हो रहा था, बस मैं तो बाबा की गोदी, अब उसको पता ही नहीं बाबा है क्या, कहता मैं लाइट की लहरों में लहरा रहा था, मैं ऐसे अनुभव कर रहा था। अब जिसको बाबा का मालूम नहीं, ज्ञान का मालूम नहीं, ऐसे स्थान पर बैठने से उसने अनेक गहरे अनुभव प्राप्त किए। हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमें भरपूर करता है, बाबा ऐसे अनुभव कराता है। तो अभी कल के दिन हमको ये देखना है कि चारों स्थान पर अपने क्या क्या अनुभव किए। अगर मोबाइल पर किसी से भी बात करना है, मोबाइल पर अगर कोई भी एक दूसरे की शेयरिंग करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे, ना शांति स्तंभ पर, ना उस बाबा के कमरे में, ना हिस्ट्री हॉल में, ना झोपड़ी के पास। आपको चारों धाम का अनुभव करने के लिए कहा है, दुनिया भक्ति में जाते चारों धाम की यात्रा करने, आप तो चारों धाम में बैठे हो। एक और बात सुनाती, एक बार कोई व्यक्ति आया किसी से मिलने के लिए, तो वो मिलने आया तो वो आंगन में बैठ गया थल्ले पर, तो मैं उसको मिली, मैंने कहा भाई जी कुछ काम है, कहता आया था एक बहन से मिलने के लिए, तो मैंने कहा चलो अंदर रिसेप्शन में बैठ जाओ, कहता बहन जी मैं तो रिसेप्शन में बिल्कुल नहीं बैठूंगा। मैंने कहा क्यों, कहता यहाँ पर जो भगवान के ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव हो रहे हैं, ये तो एक बहाना था बहन से मिलने का, मैं उससे भी बाद में मिलूंगा, मेरे को जो अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव मुझे प्राप्त करने दो। अब बताओ आया है किसी से मिलने और कर रहा है भगवान के साथ का अनुभव, और बाबा ने कण कण पर इतनी तपस्या की है, बाबा सारे पांडव वन के अंदर चक्कर लगाते थे, ऐसी विशेष आत्मा योगी तपस्वी जो श्री कृष्ण का स्वरूप धारण करने वाली है, जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, जो सारे विश्व पे राज्य करने वाली हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं जो सारे पांडव वन के अंदर इतनी शक्ति भर दी है, तो उस शक्ति को हम इस भट्टी के अंदर अनुभव करें। आपस में बातचीत करनी है तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रह करके ये अनुभव करना है। तो बाबा देखेंगे कि ब्राह्मणों ने कितने अलंकार धारण किए हैं और कितने स्वरूप के अंदर और कैसी अपनी स्थिति के अंदर रहे हैं, वो अनुभव अभी आप सबको भट्टी के अंदर करना है। और दूसरा जो अलंकारी स्वरूप है वो है पूजनीय स्वरूप, वो है ईष्ट स्वरूप, जिसको बाबा कहते हैं कि भविष्य में तुम्हारे भगत जो हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। भगत अपने ईष्ट को अपने स्वरूप में देखना चाहते हैं, जिसके लिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं हनुमान का भगत होगा उसको गणेश दिखाई दे जाएगा वो बिल्कुल नहीं मानेगा, जो गणेश का भगत को अगर राम दिखाई देगा वो उसको नहीं मानेगा। तो आप जो देवताएं हो, ईष्ट बनने वाले हो, तो आप अपने ओरिजिनल स्वरूप के अंदर रहो। अब ईष्ट के श्रृंगार में भी अगर थोड़ा सा अंतर हो, मानो कि अगर आप ईष्ट हैं, आपकी बिंदी नहीं, जब देवी सजाती है ना झांकियां बनाते हैं उसमें अगर मुकुट नहीं होंगे, क्योंकि देवी तो बना दिए लेकिन मुकुट ही नहीं, कहते ना अगर उसको तिलक नहीं होगा, क्योंकि तिलक तो लगाए नहीं, देवी है क्या, अच्छा उसके बाजू में गले में मालाएं नहीं है, देवी तो थी लेकिन मालाएं नहीं थी। तो अब देखना क्या चाहते हैं, उसका परफेक्ट रूप देखना चाहते हैं कि उसी तरह से संपन्न है या नहीं। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, बाबा के सामने जब बच्चे जाते हैं तो बाबा भी बच्चों का परफेक्ट रूप देखना चाहते हैं। बाबा बच्चों की कमजोरियों को नहीं देखना चाहते हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे जो है संपन्न हैं, विश्व का मालिक बनने वाले हैं, तो इनको विश्व का मालिक बनना है तो उसी स्वरूप में रहें। तो बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना, तो बाबा क्या है उनके भविष्य रूप को देखते थे। देखने में साधारण है लेकिन बाबा उनके भविष्य रूप को देखते थे। बाबा कहते थे भविष्य में क्या बनने वाला है। कभी कभी बाबा के पास आते थे बच्चे, बाबा उसके भविष्य के रूप को देख के बता देते थे। फिर दूसरा आएगा, बाबा मैं क्या बनूंगा। बाबा कहते थे मैं क्यों बताऊं, तुम नहीं जानते तुम क्या पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर कभी कभी बाबा किसकी महिमा कर देते थे। फिर दूसरा आएगा कहेगा बाबा मेरी भी महिमा करे। बाबा उसकी महिमा नहीं करता था। बाबा कहते देखो इसके अंदर इच्छाएं हैं, अभी भी इच्छाएं, ये इच्छाओं से पूर्ण ही नहीं हुआ है, ईमान शान के स्वभाव का है। तो बाबा इस प्रकार से करते थे। तो बाबा कई बार मुरली के अंदर बताते ना कि मैं माला शुरू शुरू में माला बनाते थे। जब माला बनाते थे पहले कोई जो वो एक या दो नंबर में आ रहा है, फिर थोड़े टाइम के बाद वो माला वाला बहुत पीछे जा रहा है, तो बाबा ने माला बनाना बंद कर दिया। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की माला बन ही नहीं सकती, क्योंकि एक दिन तो पुरुषार्थ में इतना ऊंचा चढ़ जाते हैं, जैसे पारा होता है ना, पारा दूध को उबालते तो एकदम उबलेगा तो जोर से उबल करके फिर नीचे गिरेगा। एक दिन देखो तो पुरुषार्थ में बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं, एक दिन देखो तो पुरुषार्थ में बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, चारों तरफ चक्करी लगाते रहते, घूमते रहते ऊपर नीचे दाएं बाएं, बच्चों की तरह खेल करते रहते हैं। तो बाबा भी मुस्कुराते हैं ब्राह्मणों के खेल को देख करके। तो बाबा कहते अभी भल खेल कर रहे हैं लेकिन बच्चों को अपने संपन्न स्वरूप में तो रहना ही है ना, तो इसलिए बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी आप भट्ठी के अंदर आए हो, जितनी शक्तियां जमा करनी है, जितने अनुभव जमा करने हैं, जितने स्वरूपों की प्राप्ति करनी है, फरिश्ता स्वरूप बनकर के चलना है और बाबा को साथ लेकर के चलना है, बाबा के साथ के अनुभव करने हैं, उतने करो। तो बाबा कभी कभी शुरू में साकार में बाबा थे ना, तो यहाँ पर 1966 में यहाँ पर पहली प्रदर्शनी हुई थी, उस समय बाबा ने सब महारथियों को बुलाया था। तो सुबह अमृत वेले के बाद बाबा क्या करते थे, पांडव वन के आंगन में खड़े हो जाते थे, वहां खड़े हुए सबको दृष्टि देते हुए बाबा सबको वरदान देते थे। और फिर गेट के पास जाकर के बाबा कहते थे कि फरिश्ते बनकर के सारे विश्व के अंदर फैल जाओ। अरे सारे विश्व में तो सेंटर थे ही नहीं, भारत में भी थोड़े से 15-20 सेंटर थे। तो बाबा ने उस समय विश्व के अंदर कैसे साकाश फैलाना है, कैसे वाइब्रेशन फैलाने हैं, तो बाबा ने उस समय ये सब करके दिखाया। तो आज जो सारे विश्व के अंदर इतने लोग ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा के साथ का अनुभव कर रहे हैं, ये सारा किसने किया, बाबा ने ही किया है। तो बाबा कहते इस भट्ठी के अंदर भी हमको इतना अच्छा मौका मिला है कि हम फरिश्ता बनकर के खुद भी फरिश्ता बने और दूसरों को भी वो अनुभव कराते रहे। ठीक है ना, अच्छे अनुभव कर रहे हैं ना, है? ध्यान रहेगा ना कि पूरा ध्यान देना है ना, कि इधर उधर की तरफ है बातों में ना जा करके पूरा ध्यान देना है और चारों ही धाम का गहरा से गहरा अनुभव करना है। जब आप जाओगे तो उस समय देखना कितने अच्छे अच्छे अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आज आपको बाबा के घर से याद सौगात मिलेगी और याद सौगात में है, बाबा के पास जब आते थे ना तो बाबा ने शुरू से एक नियम बनाया था अपने बच्चों को सौगात देने का। बाबा कहते थे बाबा के घर से याद सौगात मिलेगी तो बाबा और बाबा का घर याद आएगा, जब सौगात हाथ में लेंगे तो बाबा याद आएगा ना। तो आप सबको ये सौगात मिलेगी बेडशीट, और ये बेडशीट आपकी भट्ठी की सौगात है। इस सौगात को आपको यूज करना है, किसी को नहीं देना। चाहे तो ट्रेन में यूज करो, चाहे कमरे में यूज करो, चाहे भट्टी में आते हो, चाहे मधुबन पांडव शांति बनाते हो, उस समय यूज करो। ये वाली किसी को नहीं देना जो आपको मिलेगी। और बच्चों के लिए है, अच्छा। और ये बाबा हमेशा बच्चों को टोली खिलाते, कभी कलाकंद कभी बाबा पेड़ा खिलाते थे। बाबा के देखो कितना अच्छा ताकत वाला भी है और ये पवित्रता की निशानी भी है। तो बाबा सब बच्चों को खिलाते भी थे और बहुत प्यार से बाबा बच्चों को टोली भी देते थे। और ये बच्चों के लिए है, पर्स है, तो सभी को अभी सौगात मिलेगी। और सौगात लेते टाइम आप मास्क डाल करके आना और लेते टाइम हाथ लंबा कर। राजेश बेन आप इधर आ जाओ टोली बांटने।
शांति।